बाबा कहते हैं, अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे, अभी और आगे बढ़ना है ना, अव्यक्त वर्ष मनाना। अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं? ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं? वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। ऐसा नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है, कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे सारे दिन में, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उसको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग। तो रोज महादानी व वरदानी बन। वरदान कैसे देंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि हर दिन हर समय क्या बनना है? महादानी और वरदानी। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। सबसे सहज कौन सा है? ज्ञान। सबसे सहज दान ज्ञान गुण शक्तियों में से।
ग्रहण करने में गुण दान
सबसे सहज ज्ञान। दूसरा शक्तियां, मनसा से शक्तियां दान करना यथाशक्ति। और सबसे कठिन गुणों का दान। तीनों खजाने कितने भरपूर है, क्योंकि गुण दान देने के लिए स्वयं गुणमूर्त बनना पड़ेगा, स्वयं गुणों से भरपूर बनना होगा। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना, कल बाबा ने कहा था ना, बाबा अथॉरिटी है तो बच्चों को भी वैसे ही होना चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी, नॉलेजफुल बाप है, नॉलेजफुल ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो बच्चे भी नॉलेजफुल ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, अथॉरिटी हो। तो मास्टर नॉलेजफुल हो गए तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं? वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की आवश्यकता है। ज्ञान भी चाहिए उन्हें, ज्ञान हो है कईयों के पास परंतु शक्ति नहीं है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है। ये 3 दान अखंड दान चलता रहे, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादान, महादान किसे कहा जाता है? वो तो हम लोग कहते हैं, महादान होता है ना, एक है दान एक है महादान।
शक्तियों का दान महादान
नहीं, वो तो भक्ति में महादान किसको कहते हैं? वो गुप्त दान। महादान कहाँ से चल? महादान अर्थात जो बहुत बड़े पैमाने पर दान दिया जाता है, कई दिनों तक चलता है वो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन। उसमें सबसे पहला स्थान स्वर्ण का होता है। जो राजा होते थे वो महादान करते थे। कितना दान देंगे? एक पलड़े पर खुद बैठेंगे, दूसरे तरफ स्वर्ण तराजू के, और जितना उसका वजन होगा उतना वो स्वर्ण गरीबों को दान करेंगे। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, धन दान, अन्न दान, कन्या दान, वस्त्र दान, भूमि दान, ऐसे कई प्रकार के दान हैं संसार में, गोदान। ये इसमें से स्वर्ण दान जो है उसका सबसे ज्यादा महत्व था कभी इतिहास में। कई सारे शासक जो थे कन्नौज के महाराज वगैरह, उन्होंने कई इस तरह के दान दिए हैं। जो भी विदेशी यात्री भारत में आए हर्षवर्धन के काल में 6वीं शताब्दी में, उन्होंने उनके लेख में इस तरह के वर्णन लिखे है कि भारत में इस तरह का महादान होता है जो कि इस संसार में और कहीं नहीं होता है। इतने दानवीर राजा यहाँ हुए हैं भारत में। तो एक तो छोटा होता है एक दान, एक होता है महादान, बड़ा दान दानवीर करना कहते हैं उसे। दान ऐसा हो गुप्त हो सबसे पहले, तो दाया दे तो बाय को पता ना चले, इतना गुप्त हो, और तुरंत देना है। तुरंत दान का बहुत अधिक पुण्य है। तो नेत्र दान, अन्न अंग दान, अवयव दान, अलग अलग दान है अभी तो। तो बाबा कहते हैं हमें कौन सा दान देना है? ज्ञान का दान। एक है क्षमा दान भी होता है, वो भी बहुत श्रेष्ठ दान है, किसी को क्षमा कर देना। जीव दान, जीवन दान, ये अलग प्रकार के दान है। अवय दान, दान दो तो ग्रहण जो लगते थे तो छूट जाएंगे। राहु का ग्रहण, शनि का ग्रहण, इसका उसका ग्रहण जो लगता था तो उस टाइम पे दान दिया जाता था। और ब्राह्मणों को दान का विशेष महत्व है, बाकियों को तो है ही, पर ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है उसका बहुत अधिक महत्व है। कन्याओं को दान दो दिया जाता है, कन्या दान का भी एक अपने अपने आप में महत्व है। कन्याओं को दान और कन्या का दान दोनों। तो बाबा हमें कौन सा ज्ञान दान देने के लिए कहते हैं? ज्ञान, गुण। गुणों का दान देना बहुत ऊंची बात है। योग में शक्तियों का दान दे सकते हैं आत्माओं को, अज्ञात आत्माओं को, दूर की आत्माओं को या आसपास की आत्माओं को, यथाशक्ति शक्तियों से भरना, उन्हें सकाश देना। परंतु गुण दान देने के लिए स्वयं उसका स्वरूप बनना होगा, स्वयं अपने आप में उतनी शक्ति भरनी होगी, गुणों को भरना होगा। तो महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो, हर समय ये दान देते रहे, हर समय। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है, और चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है, कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे सारे दिन में, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उसको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो, सहयोग देना। गुण, गुण हाँ, दान नहीं कहेंगे सहयोग, देंगे तो लेंगे भी नहीं। इसके लिए गुण दान दे, तो गुण तो लेंगे, गुण तो सीखेंगे। गुण चोर तो है ना दानी, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी वन वरदान कैसे देंगे? अभी ये दान का था, अभी वरदान। वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। जो वरदान दे रहे हैं वो मंदिरों में, वो हम हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। मुख से देने की बात ही नहीं कही है। किससे कही है? स्थिति। स्थिति इतनी शक्तिशाली है कि उससे जो ऑरा, वायुमंडल, वातावरण बन रहा है, उससे वो आत्माएं प्रभावित हो रही है, वो है दान। अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति से जो प्रकंपन उत्पन्न हो रहे हो उससे सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा, ऐसी आत्माओं को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। कैसी भी आत्मा हो, किसे दान देना है? इन आत्माओं को, गाली देने वाली, दान नहीं वरदान, गाली देने वाली, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा, ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो क्या कर दो? तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे या थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? अगर क्रोधी के आगे आपके मुख से क्रोध नहीं किया, आपने मुख से तो क्रोध नहीं किया, फिर किससे किया? आग से। बाबा ने कल कहा था अपनी संभाल करनी है, तुम्हें अपनी संभाल करनी है, जरा भी आवेश ना है, योग युक्त पक्का रहना है। चलता ना, आवेश, जोश, क्रोध का अंश है। अभी एक है पानी डालना, एक है तेल डालना, और छींटे डालना कौन सा काम? छींटे डालना क्या है? मन से। अगर क्रोधी के आगे आपके मुख से क्रोध, आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा बड़ी बड़ी आंखें करना, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, क्रोध की भावना रखी तो तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। शीतलता और प्रसन्नता के बीच में कौन सी दो बातें हैं? कल का स्लोगन निर्मल और निर्माण, पवित्रता और नम्रता, उसकी छाया कुछ था ना। तो रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहनशीलता का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे? तो क्या कहा यहाँ पर? अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले। हमारी ओपीडी में एक बार एक पेशेंट आया जो डायलिसिस पेशेंट है, अभी भी चालू है उसका डायलिसिस। एक बार बीच में कई साल उसने डायलिसिस बंद कर दिया, अभी भी है, नकी पर रोज शाम में घूमता है। तो एक बार वो इतना क्रोधित होकर आया, तब डायलिसिस चालू नहीं था, तब कुछ समय से बंद था उसका। घर में कुछ समस्या है, उसके पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इतना क्रोधित होकर आया कि सारी दवाइयां टेबल पर फेंक दी, नहीं चाहिए तुम्हारी दवाइयां, ले लो। और वो जो ओपीडी पेपर है वो फाड़ दिया वो भी फाड़ दिया और दवाइयां भी फेंक दी और बहुत गुस्सा करके चला गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कुछ एकदम क्रोध में था वो। तो ऐसी हर प्रकार की परिस्थिति आती है। फिर बाद में शाम में आया वापस क्योंकि उनके घर में ऐसी परिस्थिति है कि जो क्रोध करने वाला रहता है, हमें लगता है वो हम पर क्रोध कर रहा है, परंतु उसके क्रोध का कारण कुछ और भी हो सकता है। उसके घर में वो कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही बेटा है, वो अपंग है, वो मेंटली रिटार्डेड है, कम बुद्धि है, चल नहीं पाता है, उसका सब कुछ करना होता है, कमाने वाला कोई नहीं है घर पर। पहले शॉप थी इधर मार्केट में, वो भी चली गई और अभी वो खुद डायलिसिस पेशेंट है। तो फिशुला बनाया जो डायलिसिस के लिए, वो भी एक बनाया वो फेल हो गया, दूसरा बनाया वो भी फेल हो गया, तीसरा बनाया वो भी फेल हो गया, फिर एक महंगा वाला और एक रहता है वो बनाना पड़ा उसको। तो कर्जा भी बहुत सारा है। तो क्रोध जो ऐसी चीज है कि व्यक्ति उस क्रोध के द्वारा स्वयं को हल्का करना चाहता है, परंतु उस क्रोध का भाजन कौन बनेगा वो पता नहीं हमें वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमें लगता है कि वो हम पर कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, उसका कारण कुछ और होगा। तो वहां केवल शांत रहना ही अच्छी बात है। तो क्रोध सकाज दी उसे शांति की, प्रेम की शाम की आला नहीं कुछ बोला तो नहीं, तो ठीक है, जैसे आप बोलेंगे तो मैंने बोला कल आ जाओ, कल से डाले फिर चालू करेंगे। तो अभी है, आता है, अभी ठीक है, अभी रोज शाम को मिलता है नकी पर घूमते हुए। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल वाला द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहनशीलता, सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। सहनशीलता वो दिखाया है कि वर्धमान महावीर, महावीर एक स्थान पर हमेशा तपस्या करते थे, तो वहां पर कई भील लोग, चरवाहे लोग थे जो कि अज्ञानी थे, अनपढ़, उनको समझ में नहीं आता था ये क्या तपस्या है, वो बहुत उपहास करते थे उसका। जब भी जाते थे उसकी हंसी उड़ाते थे, उसे कुछ ना कुछ बोलते थे, कुछ ना, जब भी वो जागता था उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलते ही थे, कुछ ना कुछ ताना उसे कसते थे। जब वहां से दूर कोई एक गांव था, उन गांव के लोगों को ये पता चला कि इतनी तपस्वी आत्मा और ये अज्ञानी उसे ऐसा कह रहे, तो गांव के लोग उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि महाराज आप हमारे गांव में चलो, हम वहां आपको अलग से कमरा बना के देंगे, आप इन लोगों के बीच में नहीं रहो, ये समझ नहीं पाते आप जो तपस्या कर रहे हो, इनका इन लोगों को महत्व नहीं है। वो कहता है मुझे तो इनकी वजह से कुछ प्रभाव हुआ ही नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि यहाँ के जितने लोग हैं वो सब मेरे हैं। और जैसे माँ बाप होते हैं, और माँ बाप जैसे कोई बूढ़ा होता है व्यक्ति, तो उसके जो पोते होते हैं उसकी दाढ़ी खींचते हैं कभी, तो उसको बुरा लगता है नहीं लगता है, उसको कहीं और बैठते हैं, उसको कुछ करते हैं, उसके बाल इधर उधर कर देते हैं। तो मैं इन सबको अपनी संतान समझता हूँ, वो कहता है, मतलब यहाँ पूर्वज वाली वो बात है कि बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसको डिस्टर्ब नहीं होता है, वो छोटे जो भी करते हैं उससे। अनुभव के आधार से। तो कहता है कि वहां पर मतलब ये दिखाया क्षमादान के लिए, रहम की भावना, सहन शक्ति कैसी आएगी उसके पीछे के ये कुछ विधि है मतलब। तो अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे, महादानी वरदानी बनो, चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्र द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेंगे तब भरेंगे। तो महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कैसे, व्यर्थ के साथ जोड़ा बाबा ने इसको, बिजी रहेंगे। क्योंकि जो महादानी वरदानी है दूसरों को देने वाले दाता है, तो दाता का अर्थ ही है दान। कौन कर सकता है, जो शक्तिशाली है, जो संपूर्ण, जो संपन्न है, जो समर्थ है। समर्थ होगा तब तो देगा, तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार आ नहीं सकता। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना, स्विच ऑन स्विच ऑफ का खेल है। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है, या कभी ठीक कभी लूज कभी फ्यूज। ऑन करना तो आता है ना, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अंधकार को भगाया नहीं जा सकता है। कैसे दूर करेंगे अंधकार को, प्रकाश को लाने से, दिए को लाने से। अगर हम ये सोचे कि अंधकार कोई व्यक्ति है और किसी कमरे में बैठा हुआ है, 1000 साल से अपना राज्य है उसका, हमें उस अंधकार रूपी व्यक्ति को भगाना है, हम अपनी सेना लेकर गए, तलवार लेकर गए और उसको भगाए, तो कितना भी लड़ो हमसे वो अधिक शक्तिशाली होगा। वैसा अज्ञान भी वैसा अंधकार है। तो अज्ञान को हटाने के लिए प्रकाश को लाना पड़ेगा। जब भी समझ में नहीं आ रहा है परिस्थितियों में क्या किया जाए, तब समझ लेना चाहिए कि अज्ञान है अभी भी, तो वहां पर ज्ञान को लाओ, स्वयं के ज्ञान को बढ़ाना है। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है, और क्या नवीनता करेंगे। अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट, यहाँ चार्ट की बातें है आगे हम इसको। अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले जाता है। तो क्या सुना, कौन सा वर्ष मनाओ, महादानी और वरदानी वर्ष या अव्यक्त वर्ष कहते हैं बाबा। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे क्या दो, दान दो, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। शक्तियों को स्वयं में भरना है। कब भरेंगे, कब भरेंगे गुणों को, कब भरेंगे, भरेंगे कब, टाइम आज बाबा ने कहा है मुरली में, अमृत वेले का समय था। बाप दादा ने एक खेल देखा, कौन सा खेल देखा, कहानी के तौर पे सुना रहे, अमृत वेले का समय था, सब आत्माएं रूपी एयरक्राफ्ट, एयरड्रोम, एयरड्रोम होता है, एक होता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट बड़ा होता है थोड़ा, एयरड्रोम थोड़ा छोटा होता है, जो छोटा है उसको एयरड्रोम कहा जाता है, जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा होता है। तो सुबह सुबह अमृत वेले क्या आ गई, सारी आत्माएं अराइवल, फर्स्ट स्टेप अराइवल तो हो गया, सारी आत्माएं आ गई अपने अपने स्थान पर, जो कि रूहानी एयरपोर्ट एरोड्रम है वो, बाबा ने कहा। आ तो गई, सेकंड स्टेप अराइवल, सेकंड स्टेप चेकिंग, थर्ड स्टेप भरना रिफ्यूलिंग, फोर्थ स्टेप टेक ऑफ। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में जो बीच की जो मेन जो दो बातें हैं उसके ऊपर बाबा ने कहा। कई लोग किस में लग जाते हैं, चेकिंग में लग जाते हैं। कौन सी चेकिंग? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ये तन नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, ये करते 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 उड़ने का, क्योंकि डायरेक्शन मिला हुआ है और लक्ष्य मिला हुआ है। लक्ष्य मिला हुआ है बाप समान बनकर उड़ने का, डायरेक्शन मिला है एक सेकेंड में। तो कई लोग किस में लग जाते हैं, चेकिंग में लग जाते हैं, और कुछ लोग भरने में लग जाते हैं। जैसे उस एयरक्राफ्ट में, उस फ्लाइट में खाना भरो, पेट्रोल भरो, हवा भरो, वैसे यहाँ मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये सम्मान ले लेते परंतु उसका स्वरूप नहीं बन पाते। या तो भरने में ही लग जाते और उड़ना रह जाता है। कितना टाइम में उड़ना है? एक सेकंड में उड़ना है। अराइवल, चेकिंग, भरना रिफ्यूलिंग जिसको कहते हैं, और लास्ट है टेक ऑफ। तो ये जो भरना है, भरना तो है, यहाँ कहा ना शक्तियों को स्वयं में भरना तो है, परंतु उड़ना भी है एक सेकंड में। अब व्यक्त कहाँ क्या बनना है, जैसे बाप का स्नेह का रिटर्न क्या है, स्नेह की वापसी लौटाना क्या किसको कहेंगे, वो निराकारी होते हुए भी अब साकारी वतनवासी साकारी रूपधारी बना है। तो तुम्हें भी अव्यक्त वतनवासी योगी या सूक्ष्म वतनवासी योगी या परम धाम वतनवासी योगी या फिर कर्म योगी एक सेकंड में, जैसे वो प्रवेश करता है, तुम भी स्वतंत्र हो, जब चाहो तब प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि त्रिलोकी ना तो त्रिलोक त्रैलोक्य के तुम मालिक हो। तो ये जो भरने का काम है कब करना है, अमृत वेला। अमृत वेले का समय था, कितना सुंदर महावाक्य है। बाबा ने ये खेल देखा कि कौन कितना समय लगाता है। फिर बाबा बच्चे कुछ ये भी देते हैं, कारण भी देते हैं। क्या कारण देते हैं, क्यों नहीं उड़ सकते?
देह का
बंधन है, आप तो निर्बंधन हो, हम तो बंधन में है। किसका बंधन? देह का बंधन, कर्म का बंधन, संस्कारों का बंधन है। तो बाबा ने क्या आंसर दिया इसका, मर्जीवा हो ना, तुमने सब कुछ दे दिया, जब कहते हो तन मन धन सब तेरा, तो अभी भी रहा हुआ है तन, तेरे को मेरा करने में होशियार हो। कौन सा तेरा, कौन सा तेरा? ये तन तुम्हारा नहीं है, तन की जिम्मेवारी बाप की है। ये सेवा तुम्हारी नहीं है, मेरी सेवा नहीं कहो, बाप ने दी हुई है। तो ये तन और सेवा, इन दो चीजों के लिए। ये कितना भी व्यस्त हो, बाबा ने कहा अति अति के समय अंत का अभ्यास करो। ये अति क्या है? किसी एक बहन ने मुझे पूछा दो तीन दिन पहले, ये बाबा ने अति किसके लिए कहा हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। अति के समय अंत की स्थिति का अभ्यास करो, ये अति सेवाओं के लिए है, विनाश का अति नहीं। अति खींचतान और जो सेवा होती है, तो सेवाओं की अति खींचतान जब है तब अंत की स्थिति कर्माति स्थिति अशरीरपन का अभ्यास करो, तब पासवी डॉनर होंगे, तब ये नहीं कहेंगे कि तेरे को मेरे में नहीं किया। तो सारी मुरली का सार है कि एक सेकंड में अगर उड़ना है तो क्या करो, ये नहीं समझो कि ये मेरी, ये बाप की जिम्मेवारी है। बाप जिम्मेदारी लेने को तैयार हो पर तुम छोड़ते नहीं हो तन की भी, क्योंकि बाप ने ही पुराने तन में क्या भर दिया है, शक्ति भर दी है। तो भरने का समय कौन सा है, अमृत वेला। भरना भी है और उड़ना भी है, शक्तियों को भरना भी है, ज्ञान को भरना भी है, गुणों को भी भरना है। क्योंकि ज्ञान सागर अगर सामने हम ले तो उसका संपूर्ण ज्ञान हम में समा जाएगा, क्योंकि अशरीरी अवस्था है। और हम ये सोचे कि ज्ञान सूर्य सामने, उससे संपूर्ण ज्ञान मुझ आत्मा में भर रहा है, तो वो ज्ञान स्वतः ही भर जाएगा सब कुछ। तो महादानी आत्माएं दान दिए बिना नहीं रह सकती, तो सारे दिन भर दान देते ही रहना है। एक तो ज्ञान का, शक्तियों का दान अमृत वेला या नुमाशाम का योग, अगर बीच बीच में दे सके तो बहुत अच्छा है। जो भी दुखी अशांत आत्माएं हमको दिखे उन्हें केवल शक्तियां देनी है, चलते फिरते उठते बैठते। जैसे जैसे कोई अस्पताल में होता है ना, दुखी आत्माएं होती है वहां पे, अशांत आत्माएं होती है, परेशान आत्माएं होती है, पीड़ित होती है, दर्द में होती है, एक निगेटिव वाइब्रेशन लेकर आती है। उन सभी आत्माओं को सकाश देना, पॉजिटिव एनर्जी देना, शक्ति देना, यह है शक्तियों का दान। ज्ञान का दान केवल उन्हें ही देना जो इंटरेस्टेड है। ब्राह्मणों को ज्ञान का दान थोड़ा सोच समझ के, ज्ञान का इंजेक्शन अज्ञानियों को लगाओ, ज्ञानियों को लगाओगे तो रिएक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके लिए ज्ञानियों को थोड़ा संभाल के इंजेक्शन लगाना। हाँ, दान उसी को देना है ज्ञान का जो इंटरेस्टेड है। आने वाले तो, और लास्ट में सबसे बड़ा दान है गुणों का दान। जितने दिव्य गुण है वो जब तक हम में नहीं है, हम में हो जाना, हम में आ जाना, हम में समा जाना ही ऑटोमेटिक दान होते रहेगा। कोई हमसे कुछ बोला नहीं, केवल देखा इसमें ये चीज है और उसने वो स्वीकार कर लिया, ले लिया और अपने जीवन में ला लिया। किसने खाली देखा कि ये अमृत वेला उठते हैं, हमने कुछ कहा नहीं उससे कि करो अमृत वेला, जल्दी उठो, खाली देखा और वो खुद उठना चालू हो जाएगा। बाहर के भी वो, किसी ने देखा इनमें सादगी बहुत है, केवल देखा और वो करना चालू कर देंगे। किसी को बोलकर, लास्ट संडे था ना, वाचा से और मनसा से भी अभी नहीं समझा, केवल शुभ भावना रखो तो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएंगे। और लास्ट में वरदान क्या बोला, कौन सी विधि है वरदान देने की, हर आत्मा संबंध संपर्क में है उसके लिए अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, यह है क्या, वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, किन किन आत्माओं को, जो ग्लानि करने वाली, निंदा करने वाली, अपमान करने वाली, कमेंट्स करने वाली, हमारे आगे अच्छा अच्छा बोलने वाली और पीछे अति अच्छा बोलने वाली, ऐसी आत्माओं के लिए शुभ भावना रखना थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु हमको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारा शुभ भावना का स्टॉक वहां कम हो जाता है, उसको बढ़ाना है। अगर हमें कोई बार बार ही दिखता है ऐसा करते हुए तो हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाता है उसके लिए। तो वहां हमको ये सोचना है कि हमको हमारा शुभ वो स्टॉक को बढ़ाना है। हाँ, वो दाढ़ी तो खींचेंगे ना छोटे बच्चे, खींचने तो अभी क्या है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो सब हमें शक्तिशाली बनाने के लिए हो रहा है। वो सांता क्लॉस होता है ना, वो गुस्सा होता है क्या, वो तो गिफ्ट लेके आता है सबके लिए, क्रिश्चियन कितनी बड़ी दाढ़ी होती है, वो सब बच्चों के घर घर में जाकर उनको देता है, अगर कोई खींचे भी तो दूसरे के बच्चे होते हैं। तो हम भी तो मास्टर सांता क्लॉस तो हम ही है ना। तो ऐसी आत्माओं के लिए शुभ भावना जो कि विरोध में खड़े हैं, जो कि कभी अच्छा नहीं बोलते, जो कि अपमान करते हैं, अपमान तो आजकल कम करेंगे, परंतु कमेंट्स सबसे ज्यादा हर्ट आत्मा किससे होती है, कमेंट्स से। कोई अगर कलंक लगाए, दोष लगाए, पवित्रता पर यदि किसी पर कमेंट किए जाए तो और ज्यादा दुखी होती है आत्मा कि हमारे लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं, हम तो बहुत पवित्र है। हाँ, वो सारी जो बातें हैं उन सबके प्रति, यहां तक तो मतलब एक बार गुलजार दादी किसी एक सेंटर पर गए थे तो वहां पर कुछ माहौल ऐसा था कि बहनें बहुत परेशान थी अपनी बड़ी बहन से, और वो दादी को भी पता था, तो दादी ने इनडायरेक्टली क्लास में ऐसा कहा था कि आपके जो बड़े हैं उनकी पालना तुम्हें करनी है, छोटी बहनों को कहा था, ये समझो कि आप उनकी माँ हो। क्लास में इनडायरेक्टली इस तरह से क्लास चला था, वो इतना जबरदस्त क्लास था कि उनकी पालना तुम्हें करनी है। तो अपने अंदर इतनी शुभ भावनाओं का स्टॉक भरना है, बहुत भरना है, क्योंकि वो बार बार ये रियलाइज होता है कि स्टॉक कम हो जाता है। ऐसी कुछ आत्माएं हैं कि जो हमेशा ही आगे आगे करेगी, हमको लगता है क्या इनको सुख मिल रहा है, पर वो करेंगी, उनके प्रति ही शुभ भावना रखनी है। जब डिपार्टमेंट बंद करने का समय होगा, हमेशा कोई आत्मा ऐसी है कि तब फोन करेंगे और कहेंगे हम आ रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ हमारे ओपीडी में, 1:05 था, वो कह रहा है कि मैं आता हूँ 20 मिनट में पहुंचूंगा, आप रुकिए प्लीज रुकिए रुकिए। मैंने कहा ठीक है मैं रुकता हूँ, तो रुका, 1:30 आया ही नहीं, तो फिर मैं निकल गया। फिर बाद में बोलते अरे मैं भूल गया। अभी ऐसी आत्मा के लिए शुभ भावना रखना थोड़ा मुश्किल है, परंतु करना तो है। ओम शांति।